জয় কুঞ্জ বিহারি। জয় রাধা মাধব, জয় কুঞ্জ বিহারি, জয় জয় গোপী জন বল্লভ গিরিবর ধারি, জয় গোপী জন বল্লভ গিরিবর ধারি, যশোদা নন্দন ব্রজ জন রঞ্জন, যশোদা নন্দন ব্রজ জন রঞ্জন, যশোদা নন্দন ব্রজ জন রঞ্জন, যমুনা তীরবন চারি, যমুনা যমুনা তীরবন চারি, জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারি, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परम हंस परिवजाकाचार अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रज भूमि वृंदावन धाम की मथुरा धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की नवदीप मायापुर धाम की गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण गुरु और गौरांग की जय जयकार हो हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरो मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनाविष्ठं स्थापितं येन भूतले सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति सौपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सह गजातान् सह गणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सागद्वैतं सागदूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणाललिता श्री विशाखान्वितांश्चाह नमाम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामीनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामने गौरत्सवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुवश्च कृपा सिंधुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपाहं वंदे श्रीगुरुदीनतारणम् परमानंद माधवम। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के सत्र में आठवां स्कंद आठवां अध्याय तदनंतर पंद्रहवां श्लोक देखेंगे। समुद्रः पीतकौशेया हमें तो 15 भेजा था, 13 नहीं हुआ, चलो 13 कर देते, कोई बात नहीं, 13 तो कल नहीं हुआ, 13 नहीं हुआ। मेघा मृदंग पणवामुर् जानक गोमुखान व्यनादयन शंख वेणु वीणा तुमल निश्वनान। पीछे पीछे बोले। मेघा मृदंग पणवा मुरज आनक गोमुखान व्यनादयन शंख वेणु वीणा तुमल निश्वनान। जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं तो क्या क्या हो रहा है वर्णन कर रहे हैं। मेघा मृदंग पणव मुरज आनक गोमुखान वनादयन शंखा वेणु वीणा तुमल निश्वनान। तो यहाँ पे वाद्यंत्र जो बज रहे हैं उनके बारे में कहा है। चूंकि इस श्लोक के ऊपर श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं है तो हम 14वें श्लोक पे सीधा जाएंगे अनुवाद पढ़ के। साक्षात बादलों ने तरह तरह के ढोल तथा मृदंग पणव मुरज तथा आनक बजाए। उन्होंने शंख तथा गोमुख नामक तुरियां भी बजाई और बांसुरी तथा वीणा का भी वादन किया। इन प्रकार इन सब वाद्य यंत्रों की सम्मिलित ध्वनि अत्यंत तुमलपूर्ण थी। आगे देख रहे हैं 14वां श्लोक। ततो अभिषचत देवी ततो अभिषचो देवीं श्रियं पद्माकरां सतीं दिगिभा पूर्ण कलशै सूक्त वाक्ये दुजेरितैः ततो अभिशिशुचु देवीं श्रियं पद्माकरां सतीं दिगिभाग पूर्ण कलशैः सूक्त वाक्यै दुजैरितैः चलिए पंद्रमा देखते हैं। समुद्रापीत कौशेया वाससी समुपाहरत वरुणः स्रजं वैजयन्ती मधुना मत्त षट्पदां समुद्रापीत कौशेया वाससी समुपाहरत वरुणः स्रजं वैजयन्तीं मधुना षट् मत्त षट्पदां समुद्रापीत कौशेया वाससी समुपाहरत वरुणः स्रजं वैजयन्तीं मधुना षट् मत् षट्पदां माता जी शब्द अनुवार्थ एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा समुद्रः समुद्र ने पीत कौशेय पीला रेशमी वस्त्र वाससी पोशाक के रूप पर तथा नीचे के भाग समुपाहरत भेंट किया वरुणः जल के अधिष्ठाता देवता सृजम उन्होंने माला दी वैजयंतीम अत्यंत अलंकृत तथा बड़ी मथुना सहद से मत मत वाले षटपदाम छह पैरों वाले भौरों को समस्त बहुमूल्य रत्नों के स्रोत कृपया पीछे पीछे दोहराते जाएं समस्त बहुमूल्य रत्नों के स्रोत समुद्र ने उन्हें ऊपर तथा नीचे के भाग के लिए पीले रेशमी वस्त्र प्रदान किए जल के प्रधान देवता वरुण ने फूलों की मालाएं प्रदान की जिनके चारों ओर मधु पिए हुए मस्त भौरे मस्त हुए भौरे मंडरा रहे थे। तात्पर्य, अभिषेक उत्सव में अर्चा विग्रह को दूध दही शहद घी गोबर तथा गौमूत्र आदि से नहलाते समय पीले वस्त्र अर्पित किए जाने का रिवाज है। इस तरह श्री लक्ष्मी जी का अभिषेक नियम पूर्वक वैदिक सिद्धांतों के अनुसार संपन्न हुआ। यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव एवं वैष्णियों के चरणारविंद में दास कोटि कोटि वंदन करता है। कृपालेश प्रार्थी होकर कि आप सभी दास के ऊपर कृपा करें, जिससे श्रीमद् भागवतम का सही विमर्श उत्पन्न हो सके, क्योंकि वैष्णव के कृपा के अलावा और कोई उपलब्धि का चारा नहीं है। अभी तक हम सभी यहाँ पे देखते आए हैं, प्रकरण चल रहा है समुद्र मंथन का। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले हैं, जिनमें से एक श्री लक्ष्मी जी भी हैं, है ना। जब समुद्र मंथन प्रारंभ किया गया था तो इसका मूल उद्देश्य था जन सामान्य या समाज की वृद्धि करना, या फिर कहें उनका उत्साह वर्धन करना। यद्यपि देवता थे, उनकी शक्ति क्षीण हो गई थी, क्योंकि जो असुर थे उन्होंने उनको परास्त कर दिया था। कारण यह था कि उन्होंने अपराध किया था अपने गुरु बृहस्पति जी का। अब अपनी खोई हुई संपत्ति को प्राप्त करने के लिए उन्होंने पुनः भगवान का अर्चन वंदन करना चाहा। भगवान ने ही उनको सलाह दी कि आप एक काम करिए कि आप समुद्र मंथन का कार्य करिए, लेकिन आप अकेले नहीं कर पाओगे, आप इसके लिए असुरों की सहायता लीजिए। लेकिन किस प्रकार से? अहिमूषक न्याय से। आप सभी जानते हैं अहिमूषक न्याय। एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है कि एक टोकरी के अंदर सांप भी था और चूहा भी था। अब जो चूहा होता है वो कुतरने में बड़ा दक्ष होता है, किसी भी वस्तु को कुतर सकता है, उसमें छेद बना सकता है। तो सांप कहता है चूहे से कि देखो तुम इस टोकरी में छेद कर दो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। क्योंकि सांप में यह दक्षता नहीं होती कि वो छेद कर सके, इसलिए एक वृत्ति होती है जिसका नाम होता है सर्प वृत्ति। प्रायः जो संत लोग होते हैं वो इस वृत्ति का बहुत अच्छे से पालन करते हैं। मतलब वह घर या फिर आवास स्थान कभी नहीं बनाते, जो दूसरों ने बनाए होते हैं उसी स्थान का वो उपयोग करते हैं। जो अतिशय विरक्त होते हैं, इसलिए रूप गोस्वामी पाद या सनातन गोस्वामी पाद जैसे लोग, ये लोग पेड़ों के नीचे भी रहे, तो जिसकी जैसी सामर्थ्य है वैसा रहा करते हैं। तो इसी को सर्प वृत्ति भी कहा गया है। यद्यपि सर्प के लिए ये चीज अच्छी हो या नहीं, लेकिन साधुओं के लिए बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद खड़े रह के मकान दुकान घर बनवाता है उसकी उससे आसक्ति भी हो जाती है, क्योंकि उसका खून पसीना एक होता है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि सबको अपने बालक बालिकाओं में बड़ी आसक्ति रहती है, दूसरे के बालकों में क्यों नहीं रहती? कारण यह है क्योंकि वो उसको बाल्यकाल से देखते आ रहे हैं कि जब वो छोटा था तो थोड़ा बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ। तो एक वस्तु को देखते देखते और उस पे हमने समय लगाया हुआ है ना, उसको पोषण किया हुआ है, उसकी चेष्टाओं को देखा है, तो हमें उससे क्या हो जाती है? आसक्ति हो जाती है। लेकिन संत लोग ऐसा नहीं करते, उनको तो भगवत कृपा से जहां रहने के लिए स्थान मिल जाए वहां रहते हैं। इसी को सर्प वृत्ति कहते हैं कि हम अनर्गल कोई प्रयास नहीं करेंगे, यानी भजन व्यतिरिक्त, भजन करने के अलावा या भगवान का नाम जपने के अलावा और कोई प्रयास नहीं करेंगे, भगवान जैसे हमें रखना चाहेंगे वैसा रहेंगे। ये सर्प वृत्ति होती है। तो भगवान ने देवताओं को यही सलाह दी कि आप लोग अहिमूषक न्याय का पालन करिए, यद्यपि आप असुरों की सहायता लीजिए, लेकिन चिंता मत करो, फल आपको ही मिलेगा। तो यहां पे भगवान राजनीति का भी एक प्रकार से उपदेश कर रहे हैं। क्या राजनीति का उपदेश है? कि जन सामान्य के लिए, अगर पूरी पृथ्वी के लिए या पूरी त्रिलोकी के लिए उपकार करना हो तो एक ग्रुप को या एक समुदाय को अगर ठगा भी जाए या झूठ भी बोल दिया जाए तो कोई हानि नहीं है। अब इसमें देखा जाए तो भगवान वैसे देवताओं को छल करने के लिए कह रहे हैं। छल का उद्देश्य ही है कि भाई तुम उनसे सहायता लो, बाद में उनको हम कुछ नहीं देंगे, तो छल ही है। लेकिन इसका जो वास्तविक प्रयोजन है वो क्या है? वास्तविक प्रयोजन है त्रिलोकी का कल्याण करना, है ना? क्योंकि जब समुद्र मंथन होगा तो समुद्र बंधन से बहुत सारे रत्न निकलेंगे, तो वह देवताओं के भी उपयोगी होंगे, और अंत में जो अमृत रूपी रत्न निकलेगा उस अमृत रूपी रत्न के माध्यम से क्या होगा, देवता पुष्ट होंगे, और देवता क्या करते हैं, त्रिलोकी का शासन करते हैं, त्रिलोकी को चलाते हैं कि त्रिलोकी का जो संचालन है वो सुचारू रूप से चलता रहे, यह देवताओं के द्वारा ही निहित किया जाता है। तो इस कारण से ये जो समुद्र मंथन है, देखने में ऐसा लगता है कि भगवान यहाँ पे कपट कर रहे हैं या कपट करने की शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन ये कपट करने की शिक्षा नहीं है। ये किसकी शिक्षा है? ये राजनीतिक शिक्षा है कि समस्त जन कल्याण के लिए अगर धोखेबाजी भी की जाए तो भी चलेगा, क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं है। यहाँ पे केवल देवताओं के स्वार्थ के लिए भगवान ऐसा उपदेश नहीं कर रहे हैं, भगवान का उद्देश्य है कि त्रिलोकी का उद्धार हो। अब यहाँ पे जो प्रकरण चल रहा है कि अनेक अनेक रत्न उत्पन्न हुए हैं, आप सभी जानते ही हैं, सबसे पहले विष उत्पन्न हुआ। विष उत्पन्न होने का उद्देश्य ये है कि जब भी हम कोई अच्छा कार्य करेंगे तो पहले क्या होता है, घर घर करके विष उत्पन्न होता है। प्रायः जो साधक गण होते हैं वो जब करते हैं, जब प्रारंभिक अवस्था में, तो उनके हृदय में जितने भी विकार रहते हैं या पूर्व जन्म के संस्कार रहते हैं, काम क्रोध लोभ मद मद मत्सर्य जो भी कुछ है, वो बहुत जल्दी जल्दी ऊपर आते हैं। लोग कहते हैं कि अरे जब हम जप नहीं करते थे तब तो हमारे अंदर इतना उद्वेग इतना क्रोध नहीं हुआ करता था, लेकिन जब से हमने जप प्रारंभ किया है पता नहीं ये क्या हो गया है। तो वास्तव में होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति भक्ति साधन करता है तो हमारा हृदय क्या होता है, मथा जाता है। तो हरिनाम की मथानी से या कीर्तन की मथानी से क्या होता है, हम हृदय को मथते हैं। तो जब मथते हैं तो क्या होता है कि जो भी वस्तु रहती है, जैसे किसी तालाब को मथा जाए तो क्या होगा कि उसमें जो भी कूड़ा करकट रहेगा वो धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा, या फिर दूध दही को मखा जाए, दही को मथा जाए तो क्या होता है, मक्खन ऊपर आ जाता है। तो इस प्रकार से जब हम जप करते हैं, साधन भक्ति करते हैं, तो क्या होता है कि जो अनर्थ होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, सरफेस हो जाते हैं। इस कारण से कई कई बार ऐसा साधकों को लगता है, ठीक है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति साधन बंद कर दे। तो भगवान यही शिक्षा दे रहे हैं कि मथा जा रहा है समुद्र किसके लिए, अमृत प्राप्ति के लिए। जैसे हम लोग जो साधना करते हैं, जप करते हैं, प्रातः काल में मंगल आरती और जो भी 64 भक्ति के अंग हैं उनका अनुशीलन करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, भगवान का माधुर्य प्राप्त करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, या फिर कहें भगवान की प्रेममयी सेवा में नियोजित होना। लेकिन इसका उद्देश्य ये तो नहीं है कि हम अनर्थों को देखें कि हमारे अंदर कितने काम है, क्रोध है, लोभ है, क्या है, इनको थोड़ी हम देखना चाहते हैं। लेकिन गौण रूप से यह क्या हो जाते हैं, हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो इससे भयभीत नहीं होना चाहिए, इससे प्रसन्न नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे ऊपर जो हरिनाम प्रभु हैं बड़ी कृपा कर रहे हैं कि हमारे जो अनर्थ हैं वो हमें दिखा रहे हैं कि देखो तुम ये हो। कई बार हमें अभिमान हो जाता है कि हम बड़े अच्छे साधक हो गए हैं, तो भगवान हमारे अभिमान को तोड़ने के लिए वो हमारे जो अनर्थ होते हैं उनको दिखा देते हैं कि देखो अभी भी तुम वही हो, तुम्हारा ज्यादा कोई उत्थान नहीं हुआ है, इसलिए तुम अपने भजन साधन में अभी लगी रही है, अभी परिपूर्णता नहीं हुई है, है ना। तो इस प्रकार के उपदेश मानो भगवान दे रहे हैं अपने इस पूरे समुद्र मंथन की लीला से। फिर इसमें तरह तरह के रत्नों का प्राकट्य होता है ना, जो हविष्यदायिनी गौ माता है कामधेनु वो उत्पन्न होती हैं। तो सभी ने विचार किया कि सबसे पहले ब्राह्मणों को ये वस्तु दे देनी चाहिए, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य होता है तो ब्राह्मण वैष्णव को सबसे पहले वो दी जाती है। तो ठीक है, समुद्र मंथन में जब कामधेनु गाय निकली तो वह बृहस्पति जी को दे दी गई, कि भाई आप इससे यज्ञ वगैरह करें, सबका कल्याण होगा। फिर इसके बाद अनेक अनेक रत्न निकलते गए, है ना। फिर निकला उच्चर श्रवा घोड़ा, तो इधर तो इंद्र भी ललचाए और इधर बलि महाराज भी ललचाए। भगवान ने इंद्र की तरफ आंख दिखाते हुए उनको मना कर दिया, बैठो बैठो। बोला देखो अभी बलि महाराज का पद आपसे बड़ा है, वो राजा हैं, आप राजा नहीं हो, इसलिए उनकी जो इच्छा है पहले उनकी इच्छा को पूरा किया जाए। तो बलि महाराज को जो एकदम श्वेत फक्क करके उग्रेश्वर वह घोड़ा था उसको दे दिया गया। फिर समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन करने के बाद अब निकले एरावत हाथी। एरावत हाथी देख करके फिर से जो बलि महाराज थे उनके मन तो बड़ा, कहा टीकाओं में लिखा है उनका मन तो बड़ा किया कि हाथी भी ले लिया जाए। भगवान टोकते हैं कि देखो बलि महाराज आपको एक वाहन मिल चुका है, लेकिन देवताओं के जो राजा हैं उनको अभी कुछ भी वाहन नहीं मिला है, तो ये तो देवताओं के जो राजा इंद्रदेव हैं इनको ही मिलेगा। भगवान बगल में इंद्र के कान में कहते हैं कि देखो इंद्र संतोष रखा तो हाथी मिल गया, नहीं तो घोड़े से ही संतुष्ट होना पड़ता। अब हाथी की कीमत तो कुछ ज्यादा ही होती है घोड़े से, है ना, तो संतोष का लाभ होता है। तो इंद्र देखिए भगवान की बात मानते जा रहे हैं। तो देवताओं का ये लक्षण होता है कि देवताओं में भले ही भोग प्रवृत्ति है लेकिन उनका एक बड़ा अच्छा गुण है, क्या है, कि वह भगवान के अनुगत होकर रहते हैं। कभी भी कुछ समस्या हो जाए सीधे भगवान के चरणारविंद को पकड़ लेते हैं। तो ये शिक्षा देवताओं से अवश्य ली जा सकती है कि जब भी कुछ हमारे जीवन में कुछ भी समस्या आए तो किसी और की शरण नहीं लेना चाहिए, केवल किसकी शरण लेना चाहिए, भगवान हरि की ही शरण लेना चाहिए। तो इसके बाद फिर कौस्तुभ मणि निकली। जैसे ही कौस्तुभ मणि का प्राकट्य हुआ तो भगवान ने कहा कि देखो आप लोग ही सारी मेहनत कर रहे हैं लेकिन थोड़ी बहुत तो मेहनत हमने भी की है। सभी देवता असुर बोलते नहीं नहीं साहब ऐसा नहीं है, सारा काम तो आप ही कर रहे हो, पर्वत को उठा के भगवान ही लाए थे अपने हाथ पे, है ना, गरुड़ जी के पंख पे रख के। ये लोग तो धराशाही हो गए थे, सबके हाथ पैर टूट गए थे, कई लोग तो प्राण ही पखेरु हो गए थे। फिर इसके बाद भगवान ऊपर से भी सहस्त्र हाथ लगाए हुए थे कि जिससे जो पर्वत है कहीं हिल ना जाए बंदराचल, नीचे कूर्म रूप से विराजमान है कि कहीं ये पर्वत डूब गया तब वो तो भगवान ने जब कूर्म रूप धारण किया तब उसको संभाला। और इधर भगवान ने असुरों में और इधर देवताओं में एक एक शक्ति अपनी आवेशित की, तो जिसके कारण ये समुद्र मंथन हो पा रहा था। तो देवता असुर कहते हैं नहीं नहीं प्रभु आप ही सब करने वाले हो, आपकी जो इच्छा आप ले लीजिए। तो यद्यपि जो कौस्तुभ मणि है वो भगवान का नित्य श्री उनकी विभूषण करने वाली है, यानी जिस प्रकार से भगवान के श्रीवत चिन्ह है जो लक्ष्मी जी का चिन्ह है, इसी प्रकार से जो कौस्तुभ मणि है वो भगवान के गले में हमेशा विराजमान रहती है। लेकिन फिर भी लीला के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया कि इस लीला के माध्यम से उनको पुनः कौस्तुभ मणि का प्राकट्य हुआ। कहते हैं जो 14 रत्न निकले थे उसमें यहाँ पे पंचजन्य शंख भी निकला था, है ना, जैसे कृष्ण लीला में दिखाया जाता है कि भगवान ने उस पंचजन्य नामक असुर को मारा पर उसके जो निवास स्थान उसने जो अपना बड़ा भारी सा शंख बना रखा था पंचजन्य उसको फिर ग्रहण किया। तो यद्यपि भगवान का ये नित्य आयुध है ना, शंख चक्र गदा पद्म जैसे कहते हैं, तो शंख भी एक आयुध है, हथियार है। अब कोई कह सकता है शंख कैसे आयुध है, तो ध्वनि में बड़ी शक्ति होती है, अगर आप तीव्र गति से या बहुत अधिक ध्वनि करेंगे तो कुछ भी हो सकता है उसका प्रभाव, है ना। जैसे कई बार वर्णन आता है कि जब वृत्रासुर ने छठे स्कंद में वर्णन आया कि जब उन्होंने खूब अट्टहास किया तो देवता तो एकदम डर गए कि ये क्या हुआ, उनको लगा कि प्रलय आ गया। या भगवान नरसिंह देव जब प्रकट हुए तो उन्होंने अट्टहास किया तो ऐसा लगा कि मानो त्रिलोकी फट गई, या नरसिंह भगवान नरसिंह देव जब खंभा फाड़ के प्रकट हुए थे तो उसका शब्द ऐसा हुआ कि उनको लगा कि जो ब्रह्मांड वही फट गया है, सभी देवताओं को ऐसा लगा। तो इसका मतलब है शब्द में बड़ी शक्ति होती है ना, शब्द के माध्यम से कुछ भी हो सकता है, तो यह भी एक आयुध है। तो भगवान ने पंचजन्य शंख भी उनको इस 14 रत्नों के मंथन के दौरान प्रकट हुआ था, यानी समुद्र मंथन में एक विश्व को भी एक रत्न माना गया। विश्व को क्यों रत्न माना गया? क्योंकि विश्व भी एक प्रकार से रत्न ही है, क्योंकि औषधि चिकित्सा में जो आयुर्वेद के ज्ञाता है वो जानते हैं कि विष की चिकित्सा विष ही होता है ना। तो इस प्रकार से आप किसी को कुछ ऐसे विषैले रोग हो गए तो उसमें फिर थोड़ा थोड़ा विष भी दिया जाता है कि उससे विष का उसका निराकरण हो सके। तो इस प्रकार से ये भी एक रत्न ही है। तो यहां पे प्रसंग चल रहा है कि कई सारे रत्न प्रकट हुए, तो इन रत्नों की श्रृंखला में लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई। तो यद्यपि अब ये लक्ष्मी का स्वरूप क्या है ये जानना अति आवश्यक है ना। यहां पे हम देख रहे हैं कि जो लक्ष्मी जी यहां पे प्रकट हुई हैं वो कैसी हैं। आठवां श्लोक आप देखिए, अगर आठवां श्लोक देते हैं सिंह अवलोकन ले आए। सिंह अवलोकन कहते हैं कि पीछे मुड़ के देखना, जैसे आचार्य गण होते हैं कभी कभी कुछ लिखते रहते हैं लेकिन फिर से पीछे की बात को पुनः दोहरा देते हैं। तो हम आठवां जो श्लोक है वो बड़ा मार्मिक है और इसमें जो भगवान की श्री शक्ति है या रमा शक्ति है उसका बड़ा अच्छा विवेचन है और इसको समझना बड़ा आवश्यक भी है कि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो श्री उत्पन्न हुई है या रमा उत्पन्न हुई है उसके लिए तो सभी आकर्षित हैं, सभी चाह रहे हैं। एक तरफ जो रमा देवी हैं वो भगवान की अर्धांगनी है, उनकी नित्य सेविका है, नित्य संगनी है, तो उनके लिए तो कोई चाह करेगा नहीं। तो यहां पे जो इच्छा की जा रही है तो कौन सी श्री की जा रही है, कौन सी लक्ष्मी की जा रही है ना, ये एक प्रश्न उठता है। तो यहां पे आचार्यों ने बड़े सूक्ष्म दृष्टि से इसका अपनी टीकाओं में विवेचन किया है कि किस प्रकार से श्री तत्व है जो या लक्ष्मी तत्व है वो कितने प्रकार का होता है। तो वो यहां पर बता रहे हैं, ततश्च आविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। अब देखिए श्लोक पे थोड़ा गौर करिए कि ततश्च आविर्भूत, उसके बाद आविर्भूत हुई क्या, साक्षात श्री रमा। अब संस्कृत में अगर एक ही व्यक्ति के लिए दो शब्द प्रयोग हो जाएं तो ये पुनरावृत्ति दोष होता है। अब सुखदेव गोस्वामी में तो ऐसा है नहीं कि संस्कृत का ज्ञान नहीं है कि वो पुनरावृत्ति दोष करेंगे, है ना। तो क्योंकि यहां पे स्त्री शब्द भी प्रयोग कर दिया है और रमा शब्द भी प्रयोग कर रहे हैं, है ना, ये एक ही, दोनों के अर्थ एक ही है, तो फिर दो बार क्यों प्रयोग किया, इसका कारण है। फिर यहां पे कैसी है ये श्री जी, कैसी है ये रमा, भगवत परा, जो केवल भगवान के परायण है, जो भगवान श्री हरि की सेवा में नियोजित रहती है वो ये श्री है या वो ये लक्ष्मी है या फिर वो रमा है। रंजयंती दिशा कांत्या, अपनी कांति से जो लक्ष्मी है उनके शरीर से बड़ी उज्जवल और कहें आंखों को सुख देने वाली कांति निकलती है। कांति भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है जो आंखों को एकदम चौंधिया दे और एक होता है जो आंखों को शीतलता प्रदान करे, जैसे चंद्र किरण जो होती है वो भी कांति है लेकिन चंद्रमा को देखने से नेत्रों में शीतलता आती है। लेकिन इसी प्रकार सूर्य की किरणों को अगर हम देखते हैं तो आंखें चौंधिया जाती हैं। तो यहां पे रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। अब फिर से देखिए दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया यद्यपि वो एक ही अर्थ है। सौदामिनी मतलब होता है विद्युत, चमक होती है उसको। एक सुदामा नाम का पर्वत है ना, इस पृथ्वी पे ही है, उस पे कुछ विशेष स्फटिक शिलाएं हैं, स्फटिक बोले तो संगमरमर, तो ऐसी स्फटिक शिलाएं हैं तो उनसे बड़ी चमक निकलती है। तो जैसे उस सौदाम नामक पर्वत पे सौदामिनी मतलब सुदाम से उत्पन्न होने वाली जो चमक है उसको सौदामिनी कहा जाता है, आचार्य ने टीका में बताया है। तो विद्युत सौदामिनी, फिर से दो शब्दों का प्रयोग किया, अरे वो भी चमक है, विद्युत शब्द क्यों बोल रहे हैं। तो यहां पे कारण है, कारण क्या है, यहां पे एक ही श्लोक में लक्ष्मी जी के दो स्वरूपों का वर्णन हो रहा है। एक वो लक्ष्मी जो है संपत्ति स्वरूपा, है ना, जो वैभव स्वरूपा है, जैसे दिखता है ना, आप लोगों ने फोटो देखा होगा कि लक्ष्मी जी एक हाथ से खूब सारे जो असरफियां हैं या स्वर्ण मुद्राएं हैं उनको गिरा रही हैं, थाली में भरता जा रहा है ना। यद्यपि जो गणेश और लक्ष्मी की जो पूजा होती है दीपावली के दिन, तो उसमें ऐसा विधान देखते हैं, मतलब ऐसी फोटो आप लोगों ने देखी होगी, है ना। तो ये जो लक्ष्मी का जो स्वरूप है ना, ये कौन सा स्वरूप है? ये है संपत्ति स्वरूपा लक्ष्मी। इन लक्ष्मी की चाह तो हर कोई रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि ये लक्ष्मी का हम प्रयोग करते हैं भगवान की सेवा में, ठीक है ना। तो यहां पे जो आया ना श्री शब्द, वो संपत्ति स्वरूपा लक्ष्मी है, ये समझना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो शब्द आया है रमा, एक श्लोक आता है बैकुंठस्तु रमा प्रोक्ता जानकी दंडका बने बने रुक्मणी द्वारवत्यायाम और राधा वृंदा बने बने। तो जो रमा शब्द है या श्री शब्द है, ये प्रकरण के हिसाब से लगाना पड़ेगा, है ना। तो बैकुंठस्तु रमा प्रोक्ता, अगर बैकुंठ का प्रकरण चल रहा है वहां पे श्री या रमा शब्द आ गया तो वहां पे भगवान की जो अर्धांगिनी लक्ष्मी है उनको लिया जाएगा। बैकुंठस्तु रमा प्रोक्ता जानकी दंडका बने बने, अगर रामायण का प्रसंग है और वहां पे रमा शब्द आया या श्री शब्द आया तो उस शब्द का अर्थ होता है जानकी जी, सीता मैया। फिर आता है रुक्मणी तो द्वारवत्यायाम, अगर द्वारका लीला का प्रसंग है तो वहां पे अगर श्री या रमा शब्द प्रयोग हुआ तो उसका अर्थ होगा रुक्मणी जी। और कहीं ब्रज वृंदावन का प्रकरण है और वहां पे श्री या रमा शब्द प्रयोग हुआ तो राधा वृंदा बने बने, श्रीमती राधा रानी के लिए ही प्रयोग है, वह जाना जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रमा शब्द प्रयोग हुआ है ये किसका प्रयोग है? ये नारायण की अर्धांगिनी है, भगवान हरि की जो अर्धांगिनी है लक्ष्मी जी, उनके लिए प्रयोग हुआ है। तो ये कौन है रमा? ये जो रमा है ये है जो भगवान के वक्ष स्थल पे या फिर कहें जो रेखा के रूप में श्रीवत्स चिन्ह के रूप में रहती हैं या फिर उनके साथ में नित्य अर्धांगिनी के रूप में उनकी चरण पाद संवाहन की सेवा जो नित्य करती रहती हैं, वह ये रमा है, ठीक है ना। तो जो भगवान की नित्य अर्धांगिनी है, नित्य सेविका है, उनकी चाह तो कोई करेगा नहीं, है ना, ऐसा तो कोई दुस्साहस कर नहीं सकता। तो यहां पे जो भगवान की शक्ति स्वरूपा या फिर कहें जो संपत्ति शक्ति स्वरूपा है, यानी आजकल की भाषा में कहा जाए जो वेल्थ है ना, संपदा है, उसकी चाह यहां पे की जा रही। तो इसलिए आगे देख रहे हैं कि यहां पे सभी लोग उन लक्ष्मी को, जो कौन सी है संपत्ति स्वरूपा है, उन लक्ष्मी को हर कोई उनकी इच्छा कर रहा है। ब्रह्मा जी भी कर रहे हैं, देवता भी कर रहे हैं, असुर भी कर रहे हैं, मनुष्य भी कर रहे हैं, गंधर्व भी कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है। प्रयोजन क्या है? भगवान की सेवा। अब भगवान की जो नित्य अर्धांगिनी है, नित्य संगिनी है, उनकी तो कोई इच्छा करेगा नहीं, है ना। तो वो तो कोई जरूरत कर भी नहीं सकता, कोई दुस्साहस नहीं करेगा। अब उनकी इसी शोभा को, अब जो लक्ष्मी की जो विभूति है या फिर कहें जो संपदा है वो कैसी है, तो यहां पे बोल रहे हैं दो शब्दों में कि रंजयंती दिशा कांत्या। कांत्या शब्द में भी श्लेष अर्थ है। श्लेष अर्थ मतलब कि जो सब में इच्छा प्रकट कर रही है। कांत धातु है यहां पे जो, या फिर काम धातु है, तो वो यहां पे किसके अर्थ में प्रयोग हो रही है? इच्छा के अर्थ में, कि जो सब लोग इच्छा करते हैं कि हमें ये वस्तु मिल जाए, ये मिल जाए। तो हर कोई व्यक्ति लक्ष्मी की चाह करता है। जो भोगी व्यक्ति है, जो संसार में विषयों में भोग रखता है, विषय में जिसकी आसक्ति है, वो भी लक्ष्मी चाहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है। लेकिन जो भगवत परायण है, भगवत सेवी है, भगवत सेवोन्मुख है, वो भी लक्ष्मी की अभिलाषा रखते हैं। उनका प्रयोजन होता है भगवान श्री हरि की सेवा करना। तो जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लक्ष्मी चाहते हैं, तो उनको तो लक्ष्मी कैसे प्राप्त होती है? उनके भाग्यवशात, उनके प्रारब्ध अनुसार। जैसे कई विषयी भोगी लोग होते हैं, उनके पास भी खूब सारी धन संपदा होती है, तो उनका जो प्रारब्ध होता है उसके अनुसार प्राप्त होती है। लेकिन भक्तों को जो श्री संपदा प्राप्त होती है, या कहें जो संपदा है वो प्राप्त होती है, वो किसके अनुसार होती है? प्रारब्ध वसात तो होती ही है, साथ में जो भक्ति करता है और भगवान के लिए विशेष इच्छा रखता है कुछ सेवा की, तो उनको भी भगवान प्रदान कर देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज के चरित्र में हुआ है ना, कि ध्रुव महाराज को भगवान की जो बैकुंठ विभूति है उसकी लालसा हो गई, है ना। भगवान की जो ध्रुव लोक है वो बैकुंठ से उसमें किंचित मात्र में भी भेद नहीं है, वो बैकुंठ की ही विभूति है। कहा जाता है कि जब त्रिलोकी का नाश हो जाता है यानी ब्रह्मांड का नाश हो जाता है तब भी ध्रुव लोक का नाश नहीं होता ना। तो भगवान ने मानो अपना ही एक छोटा सा अंश स्वरूप जो वैकुंठ का अंश है उसको यहाँ पे प्रकट कर दिया है ध्रुव लोक के रूप में। तो वही यहाँ पे बताया, तो रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। विद्युत क्या है? अब जो श्री लक्ष्मी जी की जैसे स्वर्ण की चमक होती है ना, या फिर जो रत्न होते हैं उनकी चमक होती है, उसी हिसाब से भगवान की जो श्री संप्रदाय है उनकी जो चमक है। तो यहाँ पे जो लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं वो चमक चमक कर रही हैं, मतलब वो एकदम चमचमा रही हैं, उनका तेज है। और यहाँ पे जो सौदामिनी शब्द है, तो सौदामिनी शब्द में दो शब्द आ गए, एक तो सुदामा पर्वत, तो यहाँ पे सुदामा पर्वत के माध्यम से श्री हरि को ही इंगित किया जा रहा है। कहने का भाव है कि जैसे हमारे श्री हरि जो नील वर्ण के हैं, जो पीत कौशेय धारण करते हैं, तो उनके हृदय में जो श्रीवत्स रूपी जो लक्ष्मी है वो विराजमान है। इसी प्रकार से मानो कैसे जिस प्रकार से सुदामा पर्वत पे जो स्फटकों की जो चमक होती है जब सूर्य की किरण पड़ती है तो वो एकदम विद्युत की तरह चमकती है, ठीक इसी प्रकार से भगवान श्री हरि की भी शोभा किससे होती है? उनकी जो अर्धांगिनी शक्ति है रमा देवी उनसे होती है, ये कहने का भाव है। तो आशा करता हूं कि जो श्री जी का जो तत्व है यानी लक्ष्मी जी का जो तत्व है उसमें दो भेद हैं, एक तो है संपत्ति स्वरूपा और दूसरी है जो भगवान की अर्धांगिनी रमा है उनके स्वरूप में है, ठीक है ना। इसका अगर थोड़ा से और अधिक विस्तार से अगर आप जानना चाहते हैं तो दसम स्कंद के 16वें अध्याय जहां पे प्रकरण आता है कि जो नाग कन्या गण है जो अपने पति कालिया के लिए प्रार्थना कर रही हैं भगवान से, तो जब नाग कन्या गणों ने देखा कि हमारे पति जो कालिया है उसको कितना सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भगवान के जो चरण धूलि है और चरण चिन्ह वह उसके श्री मस्तक पर प्राप्त हुए, कितनी सौभाग्य की बात है ना। वहां पे कह रही हैं कि कस्यानुभाव वश्य ना देव विद्महे तवांग्र रेणु स्पर्शाधिकार यद वांछा श्री ललना आचरत तपहा विहाय कामान सुचरम धृतव्रता। बड़ा ही गंभीर श्लोक है। इस श्लोक में श्री जीव गोस्वामी पाद ने अपनी वैष्णव तोष्णी टीका में बहुत सारे रहस्य जो लक्ष्मी जी से संबंधित थे वो उद्घाटित किए हैं। जैसे हम लोग वृंदावन में रहते हैं, यहाँ पास में ही बेलवन है, सभी लोग जानते हैं कि अद्यावधि आज भी श्री लक्ष्मी जी वहां बेलवन में तपस्या कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? भगवान कृष्ण जो कौन से कृष्ण है, नंद नंदन कृष्ण है जो वृंदावन बिहारी है, उन कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए या फिर कहें उन कृष्ण के चरणारविंद की सेवा प्राप्त करने के लिए अद्यावधि वहां पे क्या कर रही हैं? तपस्या कर रही हैं। अरे उनको तपस्या करने की क्या आवश्यकता हो गई? तो यहां पे समझना होगा सिद्धांत कि भगवान की जो भगवत्ता है वो अनेक रूपों में विराजमान है। जो भगवान बैकुंठेश्वर हैं या बैकुंठ अधिपति हैं, तो उन बैकुंठेश्वर अधिपति के साथ में जो लक्ष्मी विराजमान है उनको तो बैकुंठेश्वर भगवान की नित्य सेवा प्राप्त है, वो तो उनके चरणों को हमेशा पलोटती रहती हैं। तो यहां पे अब जो वो बैकुंठेश्वरी अधेश्वरी जो लक्ष्मी है उनके भी तीन स्वरूप हैं, ध्यान से समझिए। एक स्वरूप है कि जो तो वो बैकुंठ में जो भगवान नारायण है बैकुंठ में विराजमान उनकी अर्धांगिनी के रूप में विराजमान है लक्ष्मी के स्वरूप में, तो वो है। दूसरी जो लक्ष्मी जी का स्वरूप है वह है श्रीवत्स के चिन्ह के रूप में, तो वही लक्ष्मी जो बैकुंठेश्वरी है वही भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल पे जो श्रीवत्स का चिन्ह है तो वही एक चिन्ह के रूप में भी उपस्थित है। तो इस हिसाब से तो उनको भगवान का संग प्राप्त है। जो श्रीवत्स के रूप में जो रेखा के रूप में जो लक्ष्मी जी हैं उनको तो भगवान श्री कृष्ण का संग प्राप्त है। और जो तीसरा स्वरूप है लक्ष्मी जी का वो है जैसे आप लोगों ने रास पंचाध्याय का प्रकरण तो सुना ही होगा, तो उसमें ऋषि चरी गोपियां हैं, है ना, कि जो बहुत सारे ऋषि थे दंडकारण वन में जो तपस्या कर रहे थे, उन्होंने भगवान राम का सौंदर्य देखा और उसी स्वरूप में, मतलब ऋषि होते हुए भी वे भगवान राम के साथ में होना चाह रहे थे। भगवान ने कहा प्रतीक्षा करो, आगामी द्वापर युग में मैं तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करूंगा। तो वो जो ऋषि जो तपस्या कर रहे थे दंडकारण वन में, वो भी क्या हुए, गोपी हुए, तो वो ऋषि चरी गोपी हैं। इसी प्रकार से श्रुतियां, श्रुति अर्थात वेद, जब वेदों ने भगवान के माधुर्य को देखा, भगवान कृष्णचंद्र के माधुर्य को देखा, तो वो उनमें भी माधुर्य भाव उद्दीप्त हो गया, उज्ज्वल रस, और उस उज्ज्वल रस के कारण उनके हृदय में भी अभिलाषा हुई कि हम भी भगवान कृष्ण के साथ में रमण करें। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, आपकी भी अभिलाषा पूर्ण होगी द्वापर युग के अंत में। तो ऐसे अनेक अनेक जो स्वरूप है, तो लक्ष्मी जी भी जो समस्त गोपियां हैं उनके शरीर में एक एक अंश से विराजमान है। जैसे आप लोगों ने ब्रह्म संहिता पढ़ी है, ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है कि लक्ष्मी सहस्त्र सभ्य सेव मानम, कि एक नहीं हजारों लक्ष्मियों से भगवान सेवित है, अर्थात जितनी भी गोपिकाएं हैं उनमें श्री लक्ष्मी जी का कुछ अंश विराजमान है। ऐसा तो जिनमें गोपियों में श्री लक्ष्मी जी का अंश विराजमान है, तो उनको तो भगवान कृष्ण का संग प्राप्त हो जाता है, किसके माध्यम से, उन गोपिकाओं के माध्यम से। लेकिन जिनमें देवी अभिमान है, अब जो वैकुंठेश्वरी अधेश्वरी हैं, जो नारायण के साथ में विराजमान हैं, उनमें एक समस्या है। उनकी समस्या क्या है कि उनमें जो देवी अभिमान है कि मैं देवी हूं, तो भगवान मानो कहते हैं कि अगर देवी हो तो किसी देवी का पल्ला पकड़ो, हमारे साथ में तो वही व्यक्ति आ सकता है जो गोप या गोपी अभिमान रखेगा, क्योंकि भगवान क्या है, गोपेश्वर है, है ना, गोपियों के ईश्वर है। तो जो गोपी अभिमान रखेगा उसको, या गोपियों का अनुगत ग्रहण करेगा, कहने का भाव यह है जो श्रीमती राधा रानी के चरण अनुगत ग्रहण करता है उसी को श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन हो सकता है, अन्यथा और किसी को आस्वादन नहीं हो सकता। तो लक्ष्मी जी में क्या है, अब लक्ष्मी जी ने एक अंश से जो रेखा के रूप में है उससे भगवान का अंश प्राप्त किया, या फिर कहें एक अंश में उन्होंने ब्रज वृंदावन का जो आश्रय लिया, ब्रज की जो रेणु है, जो धूल है, उसका आश्रय लिया, तो इससे उन्हें इतना तो सौभाग्य मिला कि वो बेलबल में अद्यावधि तपस्या कर पा रही हैं, क्योंकि ब्रजवास भी कठिन वस्तु है। लेकिन चूंकि उनके हृदय में अभिमान ये है कि मैं देवी हूं, वह अभिमान उनका जा नहीं रहा है, या फिर कहे पूर्ण रूप से श्री राधा रानी का वह अनुगत नहीं ले पा रहे हैं, तो इसलिए उनको भगवान की जो माधुर्य लीला है, या कहें कि जो रास के प्रकरण है, रास लीला वाली जो लीलाएं हैं, उनमें उनको सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि उनमें देवी अभिमान अद्यावधि विराजमान है, ये समझना चाहिए। तो अगर संक्षिप्त में समझें तो लक्ष्मी जी के तीन स्वरूप हो गए, एक तो वैकुंठ अधीश्वरी जो नारायण की संगनी है, वह जो देवी स्वरूप है, दूसरा जो स्वरूप हुआ कि जो श्रीवत्स चिन्ह जो रेखा के रूप में है वो है, और तीसरी हुई गोपरामा अर्थात जो गोपियों के एक एक अंश के रूप में विराजमान है, है ना, मतलब गोपियों के शरीर में जो दिव्य शरीर है गोपियों के, उन श्रीअंग में, उनके श्रीअंग में लक्ष्मी स्वरूप से विराजमान है। तो ऐसी लक्ष्मी जी, ठीक है ना, तो लक्ष्मी जी के और भी भगवान की शक्तियों के अनेक भेद होते हैं, जैसे आप सभी जानते ही हैं, जैसे राधा रानी है वो हिलादनी शक्ति की अधिष्ठात्री हैं, है ना, हिलादनी शक्ति, संवित शक्ति, संवित शक्ति कहते हैं ज्ञान शक्ति को, है ना, वो भी शक्ति है। तो इस प्रकार से भगवान की अनेक शक्ति है, हिलादनी शक्ति, संवित शक्ति, और क्या होता है, श्री भू लीला, है ना, जैसे अभी देख ही रहे थे श्री शक्ति, श्री जो शक्ति होती है भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है, भू शक्ति होती है वह लोगों में प्रेम प्रदान करने के लिए होती है, यानी जो श्रीमती राधा रानी है वो भू शक्ति की अधिष्ठात्री भी है, यानी लोगों को प्रेम जो प्रदान, आह्लाद, आनंद जो प्रदान करने की जो दक्षता है वो श्रीमती राधा रानी में है। लीला शक्ति, अब जो लीला शक्ति होती है वो भी भगवान, जैसे श्री वृंदा देवी है, या फिर कहा है जो पौर्णमासी जी है, तो वो भगवान की जो लीला शक्ति है उसकी अधिष्ठात्री है ना, जैसे यमुना जी हुई, तो तो वो भगवान की जो कृपा शक्ति है, या फिर कहें तुलसी वृंदा देवी हुई, तो ये क्या है, भगवान की कृपा शक्ति। तो भगवान की शक्ति के अनेक भेद हैं, श्री शक्ति, लीला शक्ति, भू शक्ति, अनेक अनेक भेद हैं। तो जैसे अगर आप आचार्यों के जो विशेष, जैसे विशेष रूप से जैसे अगर राजपंच अध्याय की टीका पढ़ें, तो उसमें श्री चक्रवर्ती पाद और श्री जीव गोस्वामी पाद ने बड़े विस्तार से इन शक्तियों का विवेचन किया है कि कौन सी शक्ति क्या क्या है और किसने किस रूप का धारण करके भगवान के साथ में मिलन प्राप्त किया है। तो ये सारे वहां पे विवेचन आते हैं। तो कहने का भाव है, यहाँ पे जो प्रकरण चल रहा है, जहाँ पे जो श्री है उत्पन्न हुई है लक्ष्मी जी, जिसके लिए हर एक देवी या हर एक देवता कामना कर रहा है कि मुझे भगवान की संपत्ति प्राप्त हो, ये कौन सी है, संपत्ति स्वरूप श्री है, रमा नहीं है, ना भगवान की जो श्रीवत चिन्ह वाली है ना वो है, ना देवी स्वरूपा है, कौन सी है, संपत्ति है, ये समझ लेना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं, किसी कोई प्रश्न है तो कृपया पूछ सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, हरे कृष्ण।